भी हम अपने नेक्स्ट सेशन प्लेनरी सेशन 2 अब आरंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आज के स्पीकर्स को निवेदन करती हूँ स्टेज पर अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कीनोट स्पीकर राजयोगी पी के सूरज भाई जी, चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक मेहता जी एवं आज के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर भावना शर्मा एवं आज हमें जो मेडिटेशन कराने जा रहे हैं बहन श्वेता रूरकेला से। तो आज के सभी स्पीकर स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सूरज भाई जी, डॉक्टर अशोक मेहता जी, डॉक्टर भावना शर्मा जी एवं श्वेता बहन जी, और दो मिनट के लिए हम सभी प्रभु स्मृति में बैठ जाएंगे। तत्पश्चात सेशन आरंभ होगा।
राजयोग का राज जो जाने, राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, शिव से यो मिटते कई जन्मों के रो। आत्मा का हो शिव से यो मिटते कई जन्मों के रो, दुख और पाप भस्म हो जाए, योग की ज्वाला जलाए, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने,
शांति। मैं से निवेदन करती हूँ स्टेज पर उपस्थित सभी मेहमानों का बैज एवं फूलों द्वारा स्वागत करेंगे।
Thank you.
सर्वप्रथम हमारे बीच आज के कीनोट स्पीकर का एड्रेस होगा आदरणीय राजयोगी सूरज भाई जी। आपने राजयोग मेडिटेशन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के द्वारा रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे बड़े प्रॉब्लम्स, बीमारियां आदि पर कैसे सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, इस पर काफी रिसर्च किया है और कई पुस्तकें भी प्रकाशित की है। इसी प्रकार का आपका डेली टीवी शो समाधान भी कई चैनल पर टेलीकास्ट होता है, जो बहुत ही पॉपुलर एवं यूजफुल साबित हुआ है। आपने कई धार्मिक पुस्तकों एवं शास्त्रों आदि का भी अध्ययन किया है। आप स्पार्क विंग के रिसर्च प्रोग्राम्स के एडवाइजर है। इतने विशाल स्थान ब्रह्मा कुमारीज का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, यहाँ के सभी कॉम्प्लेक्स के किचन का कारोबार आप बहुत सुचारू रूप से संभाल रहे हैं। ईश्वरीय सेवा अर्थ आपने अनेक देशों का भ्रमण किया है। 2015 में आपको पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा चाणक्य अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। तो आइए सुनते हैं मास्टर ज्ञान सूर्य आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजयोगी सूरज भाई जी द्वारा कीनोट एड्रेस।
ओम शांति। टॉपिक बहुत सुंदर है, ऐसा टॉपिक जिसकी सारे संसार को बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि इसी पर मैं कार्य करता आ रहा हूं। मैं पहले आपको ये कहूंगा कि मनुष्य इतना इमोशनल और सेंसिटिव बना क्यों? किसने मनुष्य को पावरफुल होने की बजाय सेंसिटिव बना दिया, जबकि हमारे पास बहुत सारी शक्तियां हैं। मैं छोटी आयु से ही सुना करता था कि मनुष्य के मन में अनंत शक्तियां विद्यमान हैं, परंतु वो सोई रहती हैं, उन्हें जगाओ। किसी ने ये नहीं बताया था कैसे जगाओ, मनोवैज्ञानिकों की बात सुनते थे, कैसे उन्हें जगाओ और जगाकर अपने को पावरफुल बनाओ, ताकि जीवन में आने वाले सभी चैलेंजेज को हंसते हंसते पार कर सको, उनका कोई भी इफेक्ट माइंड पर और ब्रेन पर न पड़े। इधर आए, ईश्वरीय ज्ञान लिया, तो पता चला कि सोई हुई शक्तियां कैसे जगाई जाती हैं। मैं वो बात आपके सामने रखूंगा। पहली बात ये कि मन मनुष्य का आज बहुत कमजोर हो चुका है। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि पहले जैसा पावरफुल मन अभी मनुष्य का नहीं है। अगर किसी को बता दिया जाता है, कैंसर स्पेशलिस्ट बैठे हैं मेरे साथ, अगर ये किसी को बता दें कि तुम्हें कैंसर हुआ और केवल फर्स्ट स्टेज का है, तो व्यक्ति घबराने लगता है कि अब मेरा क्या होगा, ठीक न हुआ तो क्या होगा मेरा और मेरे परिवार का। मन कमजोर हो गया है। हमारा काम होता है मानसिक रूप से व्यक्ति को पावरफुल बना देना, ताकि वो बहुत स्ट्रांगली ये संकल्प कर ले कैंसर हुआ है, आया है सो जाएगा। मैंने ये प्रयोग बहुतों पर कराए हैं, बहुत सुंदर रिजल्ट इसके मिले हैं। इवन फोर्थ स्टेज का जो कैंसर हो जाता है उसको भी हमने मेंटली पावरफुल बना दिया, क्योंकि संसार में सबसे बड़ी चीज मनुष्य का मनोबल होता है। अभी कुछ दिन पहले ही पुणे में मैं था, एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर आए थे, प्रसिद्ध है वो उधर। मैंने उनसे पूछा, आप 9 ग्रहों की बात करते हो, क्या मन की शक्तियों से इनके इफेक्ट को खत्म नहीं किया जा सकता? देखिए, उसका उत्तर था कि 10वां ग्रह है मनुष्य का मनोबल। अगर अपने मन में सुंदर संकल्प कर लिए जाएं, तो कोई भी निगेटिव एनर्जी हमें टच नहीं कर सकती। यहाँ आकर आप वो सब सीखेंगे और अनुभव कर रहे होंगे कि यंत्र रोड के वाइब्रेशंस में कितनी एनर्जी है। कर रहे हैं? इधर वालों से पूछता हूँ, कर रहे हैं? इस एनर्जी से बुद्धि का विकास होता है। जब मन शांत होता है मनुष्य का, तो बुद्धि बहुत विकसित हो जाती है। हमारे पास ये दो शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। और तब आप में से कईयों का जो फील्ड है रिसर्च वर्क का, मनुष्य की बुद्धि में नए नए इंट्यूशंस आने लगते हैं। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, लोग आइंस्टीन की बात सुनाया करते थे कि देखो आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर था। कई बार उसके बाप ने उसकी पिटाई कर दी तो घर छोड़ के भाग गया। जैसे तैसे बीएससी किया, साइंटिस्ट बन गए। कहा वो तो जब अपनी बेड पे शांति में और एकांत में लेटा रहता था, उसको तो इंट्यूशंस प्राप्त होते थे। तो इन रियल सेंस ही वाज ए ग्रेट योगी। साइंटिस्ट वैसे भी योगी ही होता है, अपने फील्ड से बहुत गहराई से जुड़ा रहता है। दूसरी बात पर आपको ले चलता हूं, जो व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है उसको क्रोध बहुत जल्दी आता है, वो इरिटेट बहुत जल्दी होता है, और उसको पता नहीं होता कि ये क्रोध और इरिटेशन उसकी आंतरिक शक्तियों को नष्ट करता रहता है, उसे कमजोर बना रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में ये बहुत सुंदर महावाक्य है, क्रोध मनुष्य की विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। ये जो क्रोध करने वाले स्टूडेंट भी होते हैं, चाहे वो 10th क्लास में ही पढ़ते हों, हम देखते हैं हमारे पास लोग लेकर आते हैं अपने बच्चों को, जब से ये इरिटेट रहना शुरू किया है, जब से इसने क्रोध को बढ़ावा दिया है, इसके मार्क्स कम होने लगे। जो है वो 90 लाते थे, अब 70 पे आ गए, क्योंकि क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट करता है। इसलिए हम ऐसे इमोशनल नहीं बनेंगे कि जल्दी ही कोई हमें हंसा दे, जल्दी ही कोई हमें रुला दे, जल्दी ही कोई हमें परेशान कर दे, जल्दी ही कोई हमें टेंशन में डाल दे। यहाँ आकर मैं जो आपको कुछ कह रहा हूँ, आप केवल सुनेंगे नहीं, अप्रिशिएट नहीं करेंगे। कुछ चीजें यहाँ से आपको आज साथ लेकर जानी हैं, तो हम अपने मन को पावरफुल बनाएंगे। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, संसार में एक बहुत बुरी चीज बहुतों के साथ चल रही है, और वो है गहरी फीलिंग आ जाना, बैड फीलिंग। किसी ने कुछ कह दिया, मूड ऑफ, ये भी एक निगेटिव इमोशनल व्यक्ति की पहचान है। और जब मनुष्य का मूड ऑफ हो जाता है, जब मनुष्य गहरी फीलिंग में चला जाता है, तो उसकी खुशी नष्ट हो जाती है। और खुशी नष्ट हुए, हमारे यहाँ ईश्वरीय महावाक्य सुनते हुए हम सुना करते हैं कि वो जीवन जिसमें खुशी नहीं है वो तो आधी मृत्यु के समान है। बातें आती हैं, खुशी को छीन कर ले जाती हैं। अपनों ने बुरा व्यवहार कर दिया, खुशी नष्ट हो गई, और इन सब का परिणाम हो रहा है। आप सब में से कईयों को इसके अनुभव हो गए होंगे अपने परिवारों में। जो समस्या आजकल संसार में उग्र रूप लेती जा रही है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान खिंचाऊंगा। मानसिक रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूं, पर स्पिरिचुअली हम मानसिक रोगों के उपचार की विधि लोगों को सिखाते हैं। मेरे पास बहुत लोग आने लगे हैं। मैं आपको कहूं तो अब से 30 साल पहले पूरे साल में कोई एक व्यक्ति आता था मेरे पास डिप्रेशन लेकर। थोड़ा आगे बढ़े, मास में एक व्यक्ति आने लगा, और आगे बढ़े। अब से 10 साल पहले रोज एक व्यक्ति आने लगा और आजकल जो आएगा मानसिक समस्या लेकर ही आता है। मैं बहुत सोच रही हूँ, मन अनकंट्रोल्ड हो गया है, बुरी बातें दिमाग से जाती नहीं, पति ने 5 साल पहले ये कह दिया था वो इधर होल्ड कर लिया है मैंने, कैसे निकालूं उसको, इंसोम्निया हो गया है, रात को नींद नहीं आती, एक विचार आ गया सो आ ही रहा है। और आजकल एक बढ़ती हुई समस्या ये भी है, ज्यादातर वो बहनों माताओं में रहती है, सारा दिन हाथ धोना जब तक एक साबुन खत्म ना हो जाए, तब तक नहाते रहना जब तक टंकी का पानी समाप्त न हो जाए। मैं पूछा करता हूँ माताओं से, बच्चों के लिए पानी नहीं बचाती? कहा 4 घंटे लगते हैं मुझे बाथरूम में। कभी कभी तो एक माता की हंसी की बात सुना देता हूँ, कहा, मैंने कहा 4 घंटे नहाती हो? कहा कभी कभी नहा के थक जाती हूँ, वहीं लेट जाती हूँ और नींद आ जाती है, बाथरूम बेडरूम बन गया है। ये मानसिक समस्याएं संसार को अपने चक्र व्यूह में फंसाती जा रही हैं। युवकों में इसका प्रकोप ज्यादा दिखाई देता है। किसने हमारे मन को कमजोर किया है? एक वर्तमान की बात भी है जिससे मेरी बात सुनकर आप में से कई लोग सहमत अवश्य होंगे, आजकल तो सभी सहमत रहते हैं इस बात से, जो हमारे पास इंटरनेट, गूगल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्टेटस, हालांकि ये चीजें अच्छी भी हैं, हम इनकी पूरी बुराई नहीं कर रहे हैं, ये चीजें मानवता के लिए वरदान भी हैं, लेकिन मनुष्य अगर वरदान को अभिशाप बना ले तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक भी हैं। माताएं समस्याएं लेकर आती हैं, मेरी छोटी बच्ची फोन छोड़ती नहीं, गिरावट हो रही है। मैं उनको हंसी में कहा करता हूं, जब ये बच्ची गर्भ में थी ना, तुमने भी फोन छोड़ा नहीं होगा। मानती हैं कि यही हुआ है, मैं फ्री थी, मुझे रेस्ट दे दिया गया था, क्या करूं, तो सारा दिन फोन पे लगी रहती थी, तो वो गिफ्ट मिल गई आपकी बच्ची को। ध्यान देंगे सभी इस बात पर, बात तो हंसी की भी है लेकिन बहुत रियल है। संसार को ये सीखना और सिखाना पड़ेगा कि बच्चे जब गर्भ में हैं उनमें कैसे संस्कार डाले जाएं, किस तरह के विचार किए जाएं जो हमारे देश में महान संतति पैदा हो। किसने कमजोर किया मन को? बहुतों को तो ये पता ही नहीं कि मनुष्य का मन कमजोर हो चुका है। मैं आपको 1000 साल पहले की बात सुनाता हूं केवल। 1000 साल पहले मनुष्य का मन मोस्ट पावरफुल था। 500 साल में थोड़ी थोड़ी गिरावट आई। अब से 50 साल पहले भी मनुष्य का मन काफी पावरफुल था और 10 साल में लोवेस्ट स्टेज पर पहुंचता जा रहा है अब मन। इसलिए किसी ने कुछ कह दिया, सहन होता नहीं, क्योंकि मन जब कमजोर होता है तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, मन जब कमजोर होता है तो इच्छाएं बढ़ जाती हैं, मन जब कमजोर होता है तो मन में मनोविकार आने लगते हैं जो मनुष्य के जीवन का पतन कर देते हैं। ये मनोविकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कभी कभी मनुष्य समझ नहीं पाता कि ये भी मनोविकार हैं क्या, ये मनुष्य के पतन का इम्पोर्टेंट कारण है। काम वासना की मैं बात करूं, सेक्स लस्ट की, आप जानते हैं कितने रेप के केस संसार में होते हैं काम वासना की वृद्धि के कारण, कितने झंझट हो रहे हैं परिवारों में अहंकार की वृद्धि के कारण, कितने डिवोर्स हो रहे हैं क्रोध और अभिमान के कारण। आप सब कई अनुभवी हो गए होंगे, बच्चों की शादी कराई, 6 मास में ही समस्याएं प्रारंभ हुई, लड़का लड़की दोनों हाईली एजुकेटेड, कौन झुके, कौन किसकी बात माने, कौन किसको सम्मान दें, तुम 1 लाख कमाता है तो मैं 1.25 लाख कमाती हूं, मैं क्यों झुकूं। और छः छः मास में एक एक साल में डिवोर्स हो रहे हैं, क्रोध क्रोध के कारण बहुत डिवोर्स हो रहे हैं, झुकना कोई नहीं चाहता, झुकाना सब चाहते हैं, जो झुके वही महान, जो झुक कर चले उसी के परिवार में सुख शांति और खुशी। तो मनुष्य को इन मनोविकारों ने कमजोर किया है, ओवर थिंकिंग ने उसको बहुत कमजोर किया है। और देखिए, एक मैं गहरी बात आपके सामने रख रहा हूं, आप में से बहुतों को काम आएगी। हमारे मन में क्रिएटिव एनर्जी है, क्रिएट करने की ताकत है हमारे मन में। लेकिन मान लो एक व्यक्ति इंटरनेट पे रहता है, बहुत सवेरे उठे व्हाट्सएप खोल लिया तो कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, तो उसका मन उसमें ही चलेगा ना, क्रिएटिव एनर्जी नष्ट हो रही है। जिसको महान कार्य करने हो संसार में, जिसको महान बनना हो, जिसको संसार को कुछ देकर जाना हो, वो अपने मन की इस क्रिएटिव एनर्जी को यूज करें। और इसका तरीका ही है कि जो और सब बातें हैं उनमें कंट्रोल करें। थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। आजकल की एजुकेशन भी फोन पर और लैपटॉप पर होने लगी, वो तो ठीक है सब, लेकिन इधर उधर चले जाना, ऐसी साइड पे चले जाना जहां से मन में बहुत गंदगी भर जाती है, वो जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आने लगे जो कहते हैं रात को स्वप्न बहुत आते हैं, नींद गहरी होती नहीं, इसलिए समस्या बढ़ती जा रही है जीवन में। मैं एक ही बात पूछा करता हूं, सोने से कितने पहले से व्हाट्सएप खोल लेते हो? कहते वही तो करते हैं, घंटों पहले से खाना खाया और व्हाट्सएप देखना शुरू कर दिया, फेसबुक खोल ली, तो दिमाग में वो चीजें समा जाती हैं और वो चीजें दिमाग को हाइपर एक्टिव बना देती हैं। और नींद ना आना अनेक समस्याओं का बीज, नींद ना आना अनेक रोगों का कारण। गहरी नींद मनुष्य को आ जाए, उसकी टेंशन भी समाप्त हो जाती है, तन भी निरोग हो जाता है, मन भी बहुत हेल्दी हो जाता है। आप सब में से जो मेडिकल फील्ड से हैं, वो जानते हैं, डॉक्टर आज कहते ही हैं और मानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां इस समय साइकोसोमेटिक यानी मन से शुरू हो रही हैं। मन की निगेटिविटी होते ही, मन में टेंशन होते ही हमारे ग्लैंड्स का सिक्रेशन भी तो पॉइजनस हो जाता है ना। मैंने बहुत सारे प्रयोग लोगों से कराए, मेरी उन लोगों से बात होती है जो ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं। मैं एक छोटी सी बात कह देता हूँ, वो अभी सब्जेक्ट नहीं है मेरा। हमने ब्रेन को एनर्जी देना सिखाया और उससे बहुत चीजें ठीक होने लगी। हमने ये कराया, मैं बहुत पावरफुल हूँ, आई एम मोस्ट पावरफुल तीन चार बार करके सिर पे हाथ रखाया। हमारे पास एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं दिल्ली में, न्यूरोसर्जन हैं। मैंने उनसे पूछा, भाई एक साल पहले की बात है, मैं ये कराता हूँ क्या ये राइट है? क्योंकि मैंने मेडिकल स्टडी नहीं की, क्या होता है इससे हमारे ब्रेन में, क्योंकि ऐसा करने से 3 ब्लाइंड माताओं की आंखें खुल गई, हार्ट में छेद थे, जहां तक मुझे याद है 11 लोगों के हार्ट के छेद भर गए बहुत जल्दी, बच्चों के तो 11-11 दिन में भर गए, 21 दिन में भर गए। बहुत सारे मानसिक रोग ठीक हुए, जिनको नींद नहीं आती थी उनको नींद आने लगी। मैंने उससे पूछा कि क्यों कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं? मैंने कहा इसका क्या कोई मेडिकल एस्पेक्ट भी है? तो उसने मुझे बताया, हालांकि मैं जानता तो था लेकिन उनसे और ज्यादा नॉलेज लेना चाहता था, क्योंकि मुझे हमेशा रहता है मेरा ज्ञान हमेशा बढ़ता जाए, मैं अपने सीखने के द्वार बंद नहीं करता कभी, हमेशा सीखना है नया नया। तो उन्होंने कहा जो मनुष्य बहुत खुश है उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स तो जैसे डांस करने लगते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और इस कारण से बहुत सारी बीमारियां चली जाती हैं। मैंने कहा एनर्जी देने से भी यही होता है क्या? उसने कहा यही होता है, जो डेड हो गए हैं न्यूरॉन्स वो भी एक्टिव हो जाते हैं, जो बिल्कुल डल हो गए वो भी एक्टिव हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें ठीक होने लगती हैं। तो हमारे मन में ही बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, हम उन्हें जगाएंगे। अब मैं इस बात पर आ जाता हूं, इमोशनल तो मनुष्य बहुत हो चुके हैं, लेकिन हमें इमोशनल प्लस विजडम प्लस पावरफुल माइंड, तीनों का बैलेंस बनाना है। हमें अपने पास विजडम भी बहुत डिवाइन चाहिए, ताकि जो बातें जीवन में आ रही हैं, जो नेगेटिविटी आ रही है, जो कलयुग के वाइब्रेशंस का इफेक्ट आ रहा है, उससे हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकें, डिवाइन विजडम यहाँ आपको मिल रही है। विजडम तो हरेक के पास है। एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, उसकी पढ़ाई एसेंस रूप में विजडम ही तो बन जाती है उसके ब्रेन के लिए। यहां मिलती है हमें डिवाइन विजडम, गॉडली विजडम, उसकी मनुष्य को बहुत जरूरत होती है। इमोशनलिटी को खत्म करने के लिए, इमोशनल फीलिंग को समाप्त करने के लिए हमें पावरफुल थॉट्स की बहुत जरूरत होती है। वो पावरफुल थॉट्स कहां से आएंगे, ये मनोबल हमारा कहां से बढ़ेगा, इसके लिए भी हमें डिवाइन विजडम की जरूरत होती है, ताकि जब कमजोर विचार मन में आने लगे। मैं एक उदाहरण छोटा सा जो मैंने बात शुरू की थी वही दे देता हूं। एक व्यक्ति बीमार हो जाता है। हमारे यहाँ दो लोगों को हमारे डिपार्टमेंट में नीचे शांतिवन में टीबी आ गई। अभी टीबी का नाम सुन के लोग थोड़े परेशान होने लगते हैं, आजकल तो इलाज निकल गया है। मैंने भी उनसे फोन से कांटेक्ट किया, आइसोलेट कर दिया गया था दोनों को, अभी की बात है 15 दिन हो गए हैं। मैंने उनसे बात की बहुत अच्छी कि क्या सोच रहे हो, तो वही थोड़े थोड़े कमजोर विचार, हालांकि ईश्वरीय ज्ञान है, लेकिन ऐसी बीमारी आने पे मनुष्य थोड़ा बहुत निगेटिव हो ही जाता है। मैंने उनको कहा नो, आपको पावरफुल थॉट रखना है, हम जो पावरफुल थॉट सिखाते हैं वो ये हैं, मेरा भाग्य बहुत सुंदर है, टीवी आई है जाएगी, मैं भगवान की संतान हूं, वो मेरा मददगार है, कोई बड़ी बीमारी आई है जाएगी, वो भी सुप्रीम सर्जन है, वो सब ठीक कर देगा। मैंने 5 मिनट बात की, मन को पॉजिटिव किया और एक संकल्प कर दिया कि ये संकल्प न करना कभी। उन्हें सिखा दिया कि मेरे साथ क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए, क्योंकि उन लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, ये तो नहीं उनके पास बहुत पैसे होते हैं या और कुछ होता है। तो बहुत पॉजिटिव हो गए, खुशी आ गई जीवन में, और अभी 5-6 दिन पहले फिर गए थे अहमदाबाद चेक कराने, बहुत ठीक हो चुका है। तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत आवश्यक है मनोबल को बढ़ाने के लिए। आप सबको याद रहे, नेगेटिव थिंकिंग हमारी मन की शक्तियों को नष्ट करती है, पॉजिटिव थिंकिंग उन्हें बढ़ाती है, पावरफुल करती है। हमें ये बहुत ध्यान देना है, जैसे हम अपने भोजन पे ध्यान देते हैं पौष्टिक भोजन हो, जैसे हम अपनी और चीजों पे ध्यान देते हैं हम हेल्दी रहें, वैसे हमें इस पर भी ध्यान देना है कि हमारा मन बहुत पावरफुल रहे, उसमें निगेटिव थिंकिंग न चले, क्योंकि आज निगेटिव थिंकिंग करने का जमाना आ गया है। एक सुंदर सा थॉट मैं आपको दे रहा हूं, मैं बहुत विस्तार नहीं करूंगा, हमने यूट्यूब पर इसके लिए बहुत कुछ कहा हुआ है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन की शक्ति, अवचेतन मन की शक्ति। एक सुंदर विचार आज से आप ले लें, मेरी ये बातें सुनते हुए सवेरे थोड़ा जल्दी उठकर, मैं उसी टॉपिक पर आ रहा हूं, इस बात को पहले कह देता हूं फिर रिपीट करूंगा, सवेरे उठकर एक सुंदर संकल्प करना, मैं भगवान की संतान हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पसंद है? पसंद है? सीक्रेट भी जान लें, जो संकल्प हम करते हैं, हमारे डॉक्टर ज्यादा कह सकते हैं इस बात पर, मैं तो एक लाइन में कहूंगा जिस पर हमने एक्सपेरिमेंट कराए लोगों से, जो संकल्प हम करते हैं हमारा ब्रेन उसी तरह अपने को मैनेज कर लेता है, सेटिंग हो जाती है ब्रेन में उसी तरह की। आपने संकल्प कर दिया मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो ब्रेन ने वैसी ही सेटिंग करनी शुरू कर दी और ब्रेन से जो वाइब्रेशंस निकलेंगे वो सब कुछ अच्छा कराएंगे। दूसरा सीक्रेट भी आपको ख्याल रहे, हम जो कुछ सोच रहे हैं, थोड़ा सा फिलोसॉफी की बात भी सुना दूं इससे पहले। बचपन से ही मुझे फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ने का बहुत रस था। एक बात आया करती थी, ये संसार का खेल प्रकृति और पुरुष से मिलकर बना है। अभी उसमें एक बात तो सीधी थी, पुरुष माना आत्मा, और हमारे ऋषियों ने आचार्यों ने इतने तक माना कि आत्मा और ये शरीर प्रकृति का दोनों से मिलके ही तो जीवन चलता है, संसार बना है। लेकिन जब यहां आकर हमने ईश्वरीय ज्ञान लिया तो एक और रहस्य समझ में आ गया। बहुत अटेंशन से सुन लेना, आप में से जो रिसर्च करने वाले हों इस पे जरा वर्क करना। हम जो कुछ सोचते हैं उसकी तरंगें, उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, वो वाइब्रेशंस प्रकृति में जाते हैं, रिएक्शन होता है। ये निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। ये हमारे चारों ओर प्रकृति तो है, हवा है हमारे चारों ओर, जल कण है, अग्नि कण है, आकाश है, धरती पर हम हैं। प्रकृति के पांच तत्वों से हम निरंतर जुड़े हुए हैं। जो हम सोचेंगे उसके वाइब्रेशंस प्रकृति में जाएंगे, रिएक्शन होगा, और प्रकृति वही कुछ निर्माण करके हमें वापिस करेगी। इस रहस्य को ध्यान रखते हुए आप अपने जीवन की अनेक समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। मैंने कुछ लोगों का ही हुआ है जो गरीब थे और जो बार बार बोलते थे मैं गरीब हूं, उनसे एक प्रयोग कराया था। मैंने कहा सवेरे उठते ही पांच बार संकल्प करना, मैं बहुत भाग्यवान हूं, बहुत धनवान हूं। मेरे से पूछने लगे धनवान कहाँ है, हम झूठा मूठा संकल्प करेंगे? मैंने कहा नहीं, तुम धनवान हो, एक हंसी की बात सुन ले। और ये संकल्प करने से उनकी गरीबी नष्ट होने लगी, एक साल में तो बहुत अच्छी स्थिति में आ गए। मैंने उनको जो बताया हंसी की बात है। मेरे से किसी ने पूछा कि भाई हॉस्पिटल से पूछ के बताओ पूरे दांत लगवाने हैं मुंह में कितना पैसा आएगा, खर्च कितना होगा? उन्होंने बताया 5 लाख तो होगा अच्छे दांत लगाने। तो मैं उसको कहा 5 लाख तो तुम मुंह में दबाए घूम रही हो, और वो तो बनावटी दांत, असली की तो कीमत और ज्यादा होगी ना। हम गरीब नहीं हैं, हमारे शरीर की कीमत ही अगर आंकी जाए तो अनंत है। तो मैंने उसको पक्का कराया, ये कॉन्शियसनेस, ये संकल्प अपने मन से निकाल दो कि मैं गरीब हूं, और उठते ही ये संकल्प करना। सचमुच कई केस हमने कराए ऐसे, और गरीबी दूर हो गई, सुखी जीवन जीने लगे। मनुष्य जो संकल्प बार बार करता है उसका निर्माण होता है। सिद्धांत यही कि वाइब्रेशंस प्रकृति में जाते हैं, प्रकृति में रिएक्शन होता है, वही चीजें प्रकृति वापस कर देती है। इसलिए माताओं को एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं, केवल आपके लिए नहीं, आपको सिखाना भी है। कई माताएं अपने बच्चों से बहुत दुखी हो जाती हैं, छोटों से सवेरे स्कूल भेजना है, उन्हें उठाया जा रहा है, वो उठते नहीं हैं। अब सुंदर महावाक्य शुरू कर दिए बोलने, तुम कुंभकर्ण की संतान हो, कहां से मेरे घर में पैदा हुए, तुम तो बुद्धू हो, नालायक हो, मुझे तंग करने के लिए ही आए हो। करती हैं माताएं या नहीं ऐसा? थोड़ा थोड़ा तो करती होंगी, यहाँ जो बैठी हैं वो भी। अब देखो बच्चा अभी जगा है, अभी उसकी नींद आधी खुली है, सबको ज्ञात रहे उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है, और आपकी ओर से एक माँ की ओर से जो इमोशनली उससे जुड़ी हुई है एक आवाज जाती है तुम नालायक हो। अब वो बच्चा इतना बुद्धिमान तो नहीं ना जो सोचे मैं नालायक नहीं हूं, वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है और उसकी बुद्धि का पतन हो रहा है। आपने अगर शिवाजी की और उसकी माँ की कहानी सुनी हो, शिवाजी को जब उसकी माँ उठाती थी तो ये नहीं कहती तुम बुद्धू हो, कायर हो, सोया हुआ है, बेवकूफ हो, वो कहती थी मेरे राजा बच्चे उठो, तुम्हें देश के लिए बड़े बड़े काम करने हैं, तुम बहुत पावरफुल हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो। सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया और वैसा ही बना दिया। इसलिए बहुत ध्यान देंगे, मैं केवल माताओं को नहीं कह रहा, भाइयों को भी कह रहा हूं, कुछ ऐसी गलती करते हो अपने लिए या परिवार के लिए, जब किसी तंग हो जाते हैं तो ऐसे शब्द मुख से निकल ही जाते हैं तंग होकर, तो अपने पर कंट्रोल रखना है कि हम बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग कम से कम सवेरे जब उठे हैं करेंगे। अब मैं फिर उस बात पर आ जाता हूं, हमारे अंदर अनंत शक्तियां हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं, टाइगर का बच्चा क्या होगा बोल दो जरा। हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, तो क्या हम कमजोर होंगे? नेवर, ड्रीम्स में भी नहीं। वी आर मोस्ट पावरफुल। एक्सेप्ट करें, जिस चीज को आप गहराई से एक्सेप्ट कर लेंगे वही बन जाएंगे। मनोविज्ञान तो इतना कहता है जो सोचोगे वो बन जाओगे, पर सोचने से नहीं, जिस चीज को एक्सेप्ट करेंगे गहराई से वही बनते जाएंगे। तो सवेरे पहले 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। सोने से पहले जब हम कहते हैं हमें नींद आ रही है, तब सबकॉन्शियस माइंड जग जाता है। इन दोनों समय का आप इनको वरदानी समय बना लो अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, आपकी अनेक समस्याओं का निदान हो जाएगा। ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का मैंने बहुत प्रयोग कराया जीवन की भिन्न भिन्न समस्याओं में, किसको एग्जाम में इतने परसेंटेज लानी है उनको, किसको नौकरी का इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें सफल होना है उनको, किसी की बुद्धि कमजोर है पढ़ाई में, मान लो फिजिक्स में मन नहीं लगता, उसमें सबकॉन्शियस माइंड का कैसे प्रयोग करें, कहीं पति पत्नी की नहीं बनती है, झगड़े हो रहे हैं रात दिन उसमें, तो हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति काम करती है सवेरे जब हम उठते हैं। उठते ही ध्यान देंगे, आज से आप अपनी जीवन धारा को बदल देना, उठे पहला विचार क्या किया मन में, उसका इफेक्ट बहुत भारी जीवन पर पड़ेगा। आपको विघ्न आ रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप उठते ही संकल्प कर दो मैं भगवान की संतान, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 5 बार कर देना, आप देखेंगे सफलता के द्वार खुलने लगे। आपको शक्तिशाली बनना है, आप में सहन शक्ति की कमी है, आप किसी चीज को फेस नहीं कर पाते हैं, आंख खुलते ही 5 बार संकल्प कर देना मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूं। 5 बार सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, आपको लगेगा मेरा मनोबल बढ़ता जा रहा है। कम से कम 21 दिन करना, एक थॉट 21 दिन, तो आपकी इमोशनल फीलिंग भी नष्ट हो जाएगी, मैं मोस्ट पावरफुल हूँ, भगवान मेरा साथी है, वो मेरा परम पिता है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सहनशीलता बढ़ानी हो संकल्प कर देना मेरे पास सहनशीलता परफेक्ट है। डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ानी हो मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे पास ये निर्णय शक्ति परफेक्ट है, मेरे निर्णय यथार्थ होंगे। एक एफर्मेशन देना, एक पॉजिटिव थॉट देना अपने को, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूँ। ये कभी ना भूलना कि आपको सवेरे उठते ही अपने को याद कराना है, मैं भगवान की संतान हूँ। ये रियलिटी है, आप उससे जुड़ जाएंगे, उसकी केयर में आ जाएंगे। तो इस तरह अपने मन को पावरफुल बनाना है सबको, हमारे पावरफुल थॉट्स, हमारा सर्वशक्तिवान से जुड़ाव। और जो मेडिटेशन यहाँ सिखाया जाता है उसमें तो हम ऑलमाइटी की एनर्जी ही लेते हैं, उससे हमारी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। और हमारे पास ऐसे लाखों उदाहरण हैं जिन्होंने राजयोग से शक्तियाँ प्राप्त करके अपनी अनेक समस्याओं को जीता है। मेरे पास तो भाई बहने बहुत आते हैं, उनमें माताएं बहुत ज़्यादा आती हैं, 20 गोली रोज खाते थे, 20 दिन में छूट गई, एक खुशी जीवन में आ गई, होप आ गई, पॉजिटिविटी आ गई, सब छूट गया। तो आप संकल्प करें, हम अपने मन को किसी भी कारण से निगेटिव और कमजोर नहीं करेंगे, जो कुछ आया है वो जाएगा अवश्य, कुछ भी परमानेंट हमारे पास नहीं रहेगा। ये विश्व का खेल एक नाटक की तरह, एक फिल्म की तरह है, ये चल रहा है सदा, ध्यान देना इस बात पे, ये गति में है, इसमें स्पीड है, इसको हम पकड़ेंगे नहीं, होल्डिंग नेचर नहीं। पकड़ लिया तो हो सकता है अगली अपॉर्चुनिटी बहुत ग्रेट आ रही हो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही हो, हमने पकड़ लिया है गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम मिस कर देंगे। तो अपने चिंतन को यहाँ से बहुत सुंदर बना कर जाना, सबको महान बनना है, महान कार्य करना है, क्योंकि समय मनुष्य को कुछ और चैलेंज कर रहा है। आप सबको कम पता होगा, ये जो नेचर है ये अपनी मूल स्थिति की ओर बढ़ने लगी है, ये बिल्कुल लोवेस्ट स्टेज में आ गई थी, अब ये अपनी मूल स्टेज की ओर जा रही है, ये परफेक्ट होगी, 100% परफेक्ट होगी। इसमें बहुत परिवर्तन हम देखेंगे, बहुत सारी कैलेमिटीज देखेंगे। आप सुन रहे होंगे संसार के कई देशों में भारी भारी कैलेमिटीज चल रही हैं, भूकंप आ रहे हैं। लीबिया में कल का समाचार था 10,000 लोग बाढ़ से मारे गए, अब ये तो समाचार था, मरे तो होंगे लाखों। तो प्रकृति अपनी मूल स्थिति की ओर चल रही है, हम सभी को पॉजिटिव चिंतन के द्वारा, पावरफुल चिंतन के द्वारा प्रकृति को सुंदर वाइब्रेशंस देने हैं। ये हम सबका परम कर्तव्य है, केवल खोज कर लेने से काम नहीं चलेगा कि प्रकृति में ये हो रहा है, हमें प्रकृति की सेवा करनी है, इसको सुंदर वाइब्रेशंस देकर उसको अपनी मूल स्थिति में जाने के लिए मदद करनी है। तो आप सभी भाई बहने जो इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, मैं आप सबसे कहूंगा और मेरा पूरा विश्वास है कि आप सभी यहाँ से बहुत पावरफुल होके जाएंगे। इमोशनल होना मनुष्य की क्वालिटी भी है, हम ये नहीं कहेंगे कि मनुष्य को इमोशनल होना ही नहीं चाहिए। माँ एक बच्चे के लिए इमोशनल होती है, माँ और बच्चे का बड़ा इमोशनल नाता है, वो बहुत सुंदर चीज है, उससे बच्चे की पालना होती है, माँ का प्यार बच्चे की पालना करता है, माँ की भावनाएं बच्चे को और मैच्योर बनाती हैं। इसलिए इमोशनल होने के साथ साथ पावरफुल और विवेक शक्ति से, विजडम से आप सभी यहाँ से संपन्न होकर जाएंगे, तो आपकी ये यात्रा वरदान बन जाएगी और आपको सबको भी पावरफुल बनाना है, ताकि आने वाले चैलेंजेज को आप हंसते हंसते पार कर सको। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सूरज भाई जी का, आपने एक बहुत सरल उपाय बताया, समस्या पर काम न करें, अपने मन पर काम करें, तो हर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। भाई जी का समाधान शो भी बहुत पॉपुलर है, आपने बहुत सुंदर समाधान दिया है, सबकी तरफ से आपका पुनश्च धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच एक विशेष हस्ती उपस्थित है जिनको हम कहते हैं डबल डॉक्टर, डॉक्टर अशोक मेहता जी। आप एक सीनियर कैंसर सर्जन है जो मुंबई के कई नामचीन हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम स्थित जानकी फाउंडेशन एवं भारत के वैल्यूज इन हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स के आप साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवाइजर है। 1996 में आपको प्रेस्टिजियस डॉक्टर बी सी रॉय अवार्ड से नवाजा गया था। माउंट आबू स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ट्रस्ट की संकल्पना के आप उद्गाता है एवं उसके फाउंडर ट्रस्टी है। साथ ही मुंबई के बीएसीएस म्यूनिसिपल हॉस्पिटल के आप मेडिकल डायरेक्टर रह चुके हैं। कैंसर के डायग्नोसिस एवं मैनेजमेंट के विषय पर आपकी पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। तो आइए हम आपसे विचार सुनेंगे आदरणीय डॉक्टर अशोक मेहता जी।
Om Shanti, and good morning to all of you. The morning session has really set the tone for making your mind very powerful. And I think the concept that we have in this university, which is the university, the godly university, Ishwariya Vishwavidyalaya, that we are not only the human body, but we are being. We are that powerful energy. And we consider mind as a part of that spirit, the soul. We have a complex of mind, intellect, and what we call personality traits or sanskar. That forms our inner world. And from there we act in the outer world. So I think if you have that concept, I think you will enjoy listening to what we are going to talk now. There is a profound connection between the two seemingly distinct domains of knowledge, the science and the spirituality. It offers complementary perspectives on reality. This is the place where the knowledge has come directly from the Supreme. And this is where many people would have little doubts in their mind. How can you get the knowledge directly from the God or the Supreme or the reality? But I have been coming here, I was a surgeon. First time I came here in 1989, I happened to be the surgeon to the chariot of God. Many of you must have heard that most of the messages, most of the knowledge that we have here is directly transmitted from the Supreme through the chariots. And therefore, whatever you hear in this place is a unique. Sometimes you may have conflicts in understanding the knowledge. But this is what a reality is. This is where the spirituality and science meet together. When you sit in this complex of more than 30 acres, built in 1996, that was the 60th year of Diamond Jubilee of the organization. This was a barren land, There's nothing except the thorns. And this, you can see what a creation this is of science and spirituality together. This is the place where you have the highest technology available today. And this is the place where the best human beings you'll find, the best species of human being, not one or two, hundreds and thousands of them. They have been created by the knowledge, by the spirituality. They say very beautifully that a man is turned into divine here. Manushya se devta banane ki ye gyan hai. When we come here as the doctors, they tell us that you become a double doctor. Not only doctor, of course you are of the physical body, but doctor of the soul, doctor of the mind. So this is a very unique place where you have a spirituality and science hand in hand. And I think science looks at the physical world through empirical observations and experimentations. We have really enjoyed the fruits of science, as I've seen in my life. I'm 86. I entered the medical school in 1955, years before. Those were the years where we didn't have any technology. Relatively now, we were almost without a technology. Except x-rays, we had nothing. Except for few blood tests, the basic things. And electrocardiogram, this is all that was there. And what had happened, when I entered the medical school, the first operation on the heart was done in 1948 in New York. And that was a small operation, mitral commissurotomy, opening of the mitral valve. Till then, we were told that touching the heart, you will get a disrepute. And look at what happened. In the next 10 years, there were open heart surgery, people started closing the holes. When I started in 61, 62, we were the first heart-lung machine was introduced. Before that, we used to operate under hypothermia, dropping the temperature down to 16 degrees and then opening the heart. So amazing. And today the technology, you can look into any part of the human body. You can have ultrasonography using the sound waves to look inside your belly or anywhere in the body. You have CT scans, you have the MRIs, you have the angiographies. You can enter into any part of the human body and take a bit out of it. We have reached a pinnacles. And I still recollect my early days as a surgeon that we had a very little technology and still we used to carry out major surgeries. But the spirituality brings you to a different dimension. Let me look at this. Another thing that has happened is non-linear behavior of subatomic particles suggesting connection between the consciousness and the material world. We are also aware that consciousness may play a fundamental role in creation and observation of the reality. And this is what we are discussing, the integration of science and spirituality. Mind-body connection, which have been another big change since 1980s. Most of us who are trained in modern medicine, we refuse to accept the Ayurveda or any other systems of medicine. Today we know that most of the diseases that we have are psychosomatic. That's an effect of mind on the body. We live under the very stressful conditions, all of us. As a matter of fact, 40% of the medical personnel, but I'm sure the scientists or those who are in scientific work, engineers or whatever you are doing, all of you work under stress, and we have the stress-related large number of diseases. Today we have high blood pressure, coronary artery disease or heart attacks, diabetes, cancer, addictions, and mental disorders. These are all related to the stress that the body has to go through from early childhood. And therefore we have started understanding the effect of mind on the body. Effect of stressful, you know, we have this what is classically described as a flight and fright syndrome. When you are under any threat, you either run and secrete a lot of adrenaline, which causes the body to run faster, but the blood pressure to go up, the pulse rate to go up, and this is called the flight and fright response. And when you meditate, you exactly have the reverse. You have what is called a relaxation response. Your pulse rate comes down, your blood pressure comes down, your mind becomes clear, and you feel more comfortable after meditation rather than after running around under any threats. So I think this is a very clear understanding today. The first time, actually, there was shown in practice by Dr. Dean Ornish almost 40 years back, that those patients who could not be treated medically for whatever reasons, because of their coronary artery disease, they could be helped by what's called lifestyle modifications. And lifestyle modifications were three things that were doing. Most important was the meditation, exercise, and diet. All three helped tremendously. And it was shown that those patients who followed the strict regime, their coronary artery disease, which was blocked, regressed, and they opened up. They started, living normally. As a matter of fact, we have in this very university, in our hospital here, a same regime being practiced for last more than 20 years by Dr. Satish Gupta, who has treated more than 10,000 patients of coronary artery disease by this diet, exercise, meditation regime, where you heard Suraj Bhai just now, the effect of positive thinking, what you can do. Main safalta ka sitara hun, main vijayi atma hun. I think this simple logic, the simple thinking, giving a positive thoughts to your body, can make a tremendous difference. That's what Dean Ornish showed in his study, and subsequently, the mind-body medicine was introduced by somebody called Dr. Herbert Benson at the Harvard University. I had the privilege to meet Dr. Herbert Benson in early 90s, and he was saying that when he started talking about mind-body medicine, people thought that the man has gone crazy. He was given a small corridor to work, and he, as a matter of fact, introduced the relaxation response when he observed the Tibetan monks on the heights of 14,000 feet in Himalayas sit in meditation and dropping all their clothes. But he said that you cannot even stand for 30 seconds without getting frostbite. That is the power of the mind. It could increase the temperature of the body, reduce the heart rate. In other words, it could control the metabolism. These are the extreme examples, but that showed what powerful the mind has, what powerful the mind is you can cultivate by meditation. So I think this is today, in the world in which we live, the stressful world, the best is to practice meditation, and the Raj Yoga meditation is the most ideal. We call it a lifestyle. It's not only meditation, but we become vegetarian. Of course, it's another thing that you should know, that we don't have addictions. No tobacco, no alcohol. That's one of the simple lifestyles. So we are away from the cancers of the mouth and throat and lung cancers. Another thing is that your fiber in your diet, which is very important. Most of the diseases of the gastrointestinal tract, large intestines, appendicitis, diverticular diseases of the colon, cancers of the colon, they are because of low fiber diet, which remains in the intestines for a long period of time. The experiment was done that pellets were given to the individuals to see the transit time, and it was shown that it takes almost 7 days for an Angrez or Englishman to pass what he has taken today. In other words, it causes a lot of diseases which are related to slow transit time on constipation. And that's why the England was considered most constipated nation in the world. And the study, I forget the name of the doctor now, but this, he studied the diet of the Africans. He used to work in Uganda for a long period of time. He said in 20 years he lived in Uganda, he hardly operated any gallbladder or appendix because those diseases don't exist there because of the diet. So this is very interesting that we should take care of our diet, exercises, and that would improve our longevity and our health. Holistic approaches, integrative medicine, holistic healing practices today are way of the life for a lot of people. They are more prevalent in the West than in our country, but it considers physical, mental, emotional, spiritual aspects of health and well-being must be considered as one. Well, another thing is ethical and moral framework. Spirituality is a necessity, provides ethical and moral framework to guide scientific research and technological development. You must be aware that you cannot undertake any research project unless and until it is cleared by the ethics committee in the hospital or, for that matter, in the country. Because that is to ensure that advances benefit humanity and the planet, and is not used for commercial purposes where they can damage a lot of people. We have today a large number of research going on. No drug can ever be entered into the market or entered into the market unless and until it goes through classical randomized double-blind trials. So I think ethics and moral framework protect us from the harm being done to us. There are infinite possibilities, as the title says, right from the notion that when science and spirituality are integrated, it opens up new ways of thinking and problem solving. It also embraces creativity and explores uncharted territories. You've heard about Chandrayaan 3 and, of course, lots of other potentially, we are leading to innovative breakthroughs by integrating both science and spirituality. The Spark itself, spirituality research, is being done by this group of small group of people. Started only in 1995, as now expanding itself in studies of consciousness. Well, science and spirituality will enrich your personal growth and understanding of the large phenomena that are occurring all around us. It provides a sense of purpose and interconnectedness with all living beings. This was a part, as Dr. Masalkar talked about, his mother, who was uneducated, looking after that pigeon which is hurt, by putting turmeric on the wound, is something which is very touching. I have seen my grandmother, who was also totally a maternal grandmother, who was totally, never went to school, but she was great. She used to wear khadar sari, and the shoes were made of kantan, not of the leather, because there you kill the animal. And she would not allow us to use water. When we were children, we used to travel, and there was chuk-chuk gari, you know, the coal. By the time you reach your native town, you're full of charcoal. And we used to be the natives of Palanpur. So when we reached there in the afternoon, she would see that the boys have come from Mumbai. They'll waste a lot of water, and there was a tremendous water shortage in this part of the country. So she would take a little tabak, maybe another, say about 3-4 liters of water, and scrub us. And not using the soap, also very little soap, and very little water, and remove all the charcoal from your body. The reason? The water had to go onto the streets, because there's no drainage system. It will go on the main street. And this is what we call environmental protection. Okay, then close the speech. All right, I think I have not even started. But anyway, what I'm going to do is I'm quickly going to tell you something that has happened in our institution here, Values in Healthcare, a Spiritual Approach, which is acronym of VYASA. It's a personal and team development program for healthcare professionals. It's a paradigm shift. Normally, doctors are supposed to look after the patients. Here, the doctors have to take care first of themselves to take care of the patients. I'm going to run through quickly. Suffice it to say that this is an experiential, facilitated program of exercises. There are no didactic lectures. It is done in small groups. We use fun, play, creativity, reflection, sharing, visualization, and meditation, which are part of spiritual tools. These are called spiritual tools, and these are used in this facilitated program. Let me pay my respects and tributes to Dadi Janki, who was the former chief of Brahma Kumaris between 2007 and 2020, before she passed away. And she was also very little education. She lived 104 years. She went to England in 1974 and lived there till 2007. This was the first overseas center of the Brahma Kumaris. And she worked for all the years. And today we have presence in almost 140 countries. You can imagine the power of spirituality. Here she is showing with a group of people who developed the VYASA. Dadi used to go to the hospitals in UK to find, she used to say, unke andar khushi nahi hai. They lack the happiness and joy of working for the poor patients. And she asked the group of 10 people, doctors, physiotherapists, nurses, educational consultant, to develop some program to bring values back to their life. The values of peace, values of positivity, value of compassion, cooperation, taking care of themselves, spirituality, and resilience. The 8 values, see, this group developed. And that program took 4 years to develop, thousands of hours of work. And we come out with a book, as you see here, the Values in Healthcare, with a 450-piece manual to develop this program. And this program, it started in 2005. It was brought to India in 2006. As you can see here, launching of VYASA in this very hall by the then president, late Dr. APJ Kalam. And I think this program has been very popular in the country. Values are not taught, but we have to pick it up. This is a picture of Mahatma Gandhi taking compassionate care of a leprosy patient, massaging his foot. This stamp was published in 1959, and it was written, "Leprosy is curable." But this picture of 1939, when this gentleman. He was a Sanskrit scholar, Parsure Shastri, who developed extensive leprosy, was turned away from his family, and he wanted to have darshan of Mahatma Gandhi before he passed away. So he goes to Vardha, was not permitted to come into Sevagram ashram, but Gandhiji subsequently took him in, kept him in the ashram against the wishes of the ashramites, and took care of him at a personal level. This is the height of compassionate care. And this is what we learn when we enter the medical school, that what a compassion can do. This is a picture of Albert Schweitzer, who received the 1952 Nobel Prize for Reverence for Life. And he started his institution in Gabon, in Central Africa, in early 1900s. And he felt that white races have done a lot of harm to the colored races, and he wanted to atone for them. He was also a musician and a pastor. Well, I think values are important. We understand the purpose of our life, and they provide happiness. Values are also the innate qualities of the soul. This little thing I wanted to spend a minute, I hope you don't mind. This is our internal world. You can see the mind, which creates thoughts, which creates feelings, emotions, attitudes, your vision. All this is a part of the soul, our soul. And it works with intellect, which is a discriminating, judgmental faculty of our soul. Both mind and intellect work together in unison. And whatever, you know, we create 40,000 to 60,000 thoughts every day. And that's important, that a lot of waste thoughts, negative thoughts, are not carried into our action. And this is, I think, Surajbhai talked tremendously on the mind, and the mind and intellect working together. And this is what we do, is in outside world, whatever we do, whatever we speak, and then same thing is a feedback, goes into your personality trait, into our subconscious mind, and what we call sanskar, and create your personality. And therefore we believe that when we are born, we have impressions of many births in our system, in our soul. And we carry not only our own sanskar, we develop during our childhood, when we are educated, then we, by the companions we keep, and so on. I won't go into the details, but the most important part is to understand how the mind functions. I think I'm going to stop here, except if I would just show you what we do. The key principle of this wellness program is physician heal thyself. You must bring back the joy of working, and you must take self-care. It's very important. Second key principle is learning through direct experiences. We don't teach by lectures, but it is small group exercises where you work with your partner and you work in small groups and bring about a change through positive thinking. The third key principle, it should be relevant to your personal and professional life. Meditation, which quietens and focuses the mind, is a very important part of one of our seven spiritual tools. Another spiritual tool is past experiences. We reflect on our successes in our past experiences, which makes you third is a visualization. We do these exercises, create mental positive images using creativity. Deep listening is another tool which we use during this group exercises. Appreciation, this entire exercise is on appreciative inquiry, and this is very important in terms of improving the performance. I think the last two tools are most important, are creativity and play. In creativity and play, we are, all of us are left cerebral, rational, logical and scientific. We have probably not acted more on the right side of our brain, which is intuitive, poetic and creative. I think this is the place where we develop the, you work together in a groups where you do the creative exercises, you sit on the floor and you have a very, it's a different experience altogether to bring left and right side of your brain together. And people really enjoy. Some people dance, create, finish. Thank you very much. I think I'm going to end here. I've probably exceeded my time. We are not realizing. Thank you very much.
Thank you very much, Dr. Ashok Mehtaji. He explained spirituality in scientific way. Values in healthcare is a combination of spirituality and science. Values from spirituality, healthcare from medicine, science. So it's a good combination. Thanks again to Dr. Ashok Mehtaji. And now we go to our last speaker, our special guest today, Dr. Bhavana Sharma. आप एक ट्रेन्ड फार्माकोलॉजिस्ट है जिन्हें इस क्षेत्र के अनेक प्रभावों का 24 साल का बहुत गहरा अनुभव है. विशेष रूप से आपने DNDI ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिसीजेस इनिशिएटिव, जिसका हेड ऑफिस जिनेवा में है, इसका लीजन ऑफिस भारत में स्थापन किया 2008 में, और इस क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है. आपने अनेक नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आदि में आप स्पीकर रहे हैं. आपके नाम पर 50 से अधिक पब्लिकेशंस भी है. एक्चुअली आपका प्रोफाइल आपके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाता है. आपके नाम से इतने सारे अकम्प्लिशमेंट जुड़े हुए हैं कि वह वर्णन करेंगे तो आपके बहुमूल्य विचार सुनने का समय बहुत कम होगा. बस इतना कहेंगे कि आपकी उपस्थिति इस कॉन्फ्रेंस को चार चांद लगा रही है. आइए सुनते हैं डॉक्टर भावना शर्मा जी.
पहले तो मैं आभार प्रकट करूंगी क्योंकि ये मेरा पहला, दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन माउंट आबू और आप लोगों के साथ संपर्क का. और मैं स्पिरिचुअलिटी से मेरा जो संपर्क है वो ज़्यादातर बीमारी से लिंक्ड है, डिजीज. आई हैव वर्क इन द एरियाज जहाँ पे लोग जाते नहीं हैं. जैसे आपने बोला कि ट्राइबल एरियाज में लेप्रसी बहुत होती है, सो आई हैव वर्क ऑन लेप्रसी, आई हैव वर्क ऑन मलेरिया, आई हैव वर्क ऑन ट्यूबरक्लोसिस एंड कालाजार. कालाजार जो जहाँ पे होता है वहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते थे और दवाइयाँ नहीं उपलब्ध थी. सो हम लोग ने, because I'm a trained scientist, I worked on new drug development, मतलब नई दवाइयाँ बनाने में काम किया है मैंने. तो हम नई दवाइयाँ काम करते हैं. और जैसे अभी भाई ने बोला था कि वो स्पिरिचुअलिटी को एक एस्पेक्ट में सोचते हैं. सो आपको मैं बताना चाहूँगी कि जब हम ड्रग डेवलपमेंट करते हैं, what we do is we find a molecule. हम एक केमिकल, या जैसे आप कोई भी एक पेड़ की औषधि लेके हम उससे एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और उसको फिर हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं छोटे से लेके, फिर हम इसको 10 साल लगते हैं करीबन करीबन एक दवाई को आप मार्केट तक लाने में. जब आप लेते हैं तो आप तो आपके लिए तो वो एक कैप्सूल होता है, बट उसके पीछे 10 साल की मेहनत होती है जिसमें कि आप उसको शुरू से लेके आखिर तक, पहले कुछ लोगों में, फिर ज़्यादा लोगों में, और फिर पूरी लोगों में उसका रिसर्च करते हैं. सो आई एम बेसिकली अ रिसर्च साइंटिस्ट. और मेरे को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा जो आपने अभी कहा, स्पिरिचुअलिटी इज द फोर्थ पार्ट डायमेंशन ऑफ ट्रीटमेंट. दवाई देते हैं, वी गिव ट्रीटमेंट टू ट्रीट द डिजीज, बट द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन, कि आपको बीमारी का क्या पर्सपेक्टिव है आपके दिमाग में, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी ट्रीटमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है. इफ़ यू थिंक लाइक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन कालाजार, मैं बिहार जाती थी और वहाँ पे मैं गांव में गई, एक 18 साल की बच्ची को मैं मिली। हम दवाइयों का कर रहे थे, तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें हमारा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, मतलब हम पेशेंट को अस्पताल में ही रखते हैं और हम उसको मॉनिटर करते हैं सवेरे शाम दिन रात 24 घंटे, बिकॉज वो लीगल है, दैट इज़ अ रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इफ़ यू डोंट डू इट देन वी आर लायबल टू अ लॉट ऑफ कॉम्पनसेशन। तो हम मैं उस बच्ची से मिलने गई, खूबसूरत लड़की, बड़े बड़े बाल थे उसके, आज तक मेरे में वो पिक्चर मेरे सामने रहती है हमेशा, क्योंकि मैं वहाँ काम करने गई थी। मैंने उससे बोला कि हमने आपको दवाई दी है, आप ठीक हो जाओगी। कहती है आप तो ऐसे ही कह रही हैं, काला आजार से तो सब लोग मर जाते हैं, मैं बचूंगी नहीं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं नहीं, हम जो दवाई का हम लेके आए हैं नई दवाई, हमने आपको इंजेक्शन से दी है, आप ठीक हो जाएंगी। पहले जो दवाइयाँ दी जाती थी उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट होते थे ना, पता है आपको, बीमारियाँ बढ़ जाती थी। तो कहती हाँ मैं ठीक तो हो रही हूँ, डॉक्टर को कुछ मिला भी नहीं। मैंने कहा आप ठीक हो जाएंगी। तो ये परसेप्शन था उसका, जिस परसेप्शन को हम लोगों ने दूर किया, एंड शी गॉट ट्रीटेड एंड शी इज फाइन। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे इंटीग्रल पार्ट बना सकते हैं, आपने ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को ये कहा कि आप ठीक हो जाएंगे, वो उसके लिए एक दवा का दवा की तरह है। वो दवा को एडजुवेंट, हम हमारी टर्मिनोलॉजी में व्हेन वी टॉक इन रिसर्च, इट्स एन एडजुवेंट थेरेपी, एंड फॉर एडजुवेंट थेरेपी वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस इट एज अ रिजल्ट। जैसे हम 40 पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस के लेते हैं, 20 में हम ये उपयोग देते हैं कि आपको एडजुवेंट थेरेपी दी जाएगी कि आप ठीक हो जाएंगे, आपको जो दवाई मिल रही है उसका सदुपयोग हो रहा है। तो वो 20 पेशेंट पे आप देखेंगे कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, बजाय उन 20 पेशेंट के जिनको आप ये पॉजिटिव री एनफोर्समेंट नहीं देंगे। इसके लिए जैसे हम कोई खाने का करते हैं, अगर हम देखें ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, अच्छा खाद्य पदार्थ देते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट का जो आउटकम्स होते हैं, मतलब जो ठीक होने की वो होती है क्षमता, वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जैसे हम स्पिरिचुअलिटी को अगर हम इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहते हैं अगर हम अपने सिस्टम का, तो हमें इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके इसको करना ही पड़ेगा। और ये आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी इनटू आवर सिस्टम ऑफ हेल्थ एट दिस मोमेंट, बिकॉज हमने इसको इवॉल्व होते देखा है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, एज डॉक्टर साहब ने पहले कहा, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई स्टडीड द एम्स, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट वी डिडंट हैव कंप्यूटर्स, हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं थे, मोबाइल फोन्स नहीं थे, बट वी हैड अ ह्यूमन टच विद द पेशेंट्स, द ट्रीटमेंट आउटकम्स वर मच बेटर। So we have to think on those terms. Right now what they are doing is the treatment outcomes are more dependent on what your physical report is. So spirituality will have to become an integral part, because bimari har vyakti ko hogi. हम ये सोचें कि हमारे को बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा शरीर एक मशीन है जो वेयर एंड टेयर हो गई। आई मीन इट विल वेयर एंड टेयर एंड इट विल ऑटोमेटिकली गो एंड वील मीट आवर स्पिरिचुअल लॉर्ड, बट उस ड्यूरेशन में हम उस बीमारी को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से उसके बारे में सोचते हैं, वो बहुत ज़रूरी पार्ट है हमें समझने का, एंड स्पिरिचुअलिटी इज द वे फॉरवर्ड फॉर दैट। So we need to teach as health professionals also need to learn, and similarly the patient needs to learn. Both of us will have to grow together to get a better outcome. But iska ek aur part bhi hai, kyunki ek hamesha har cheez ke positive nahi hote hain, kuch negative bhi hote hain. जो नेगेटिव पार्ट ये होता है कि हम यहाँ पे तो प्रेम सिखाते हैं, कहीं जगह फियर सिखाते हैं, तो हमें प्रेम से सिखाना है राधर देन फियर से, कि भाई आपके कर्मों का ये फल है, तो पेशेंट जो है वो उसको पॉजिटिवली ले ही नहीं पाता। सो उसको भी एक स्पिरिचुअलिटी में लेके, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी सबको आती है और उसका ट्रीटमेंट भी होता है, आपको दवाई लेनी है, परंतु उसके साथ अगर आप अपने दिमाग को, जैसे ब्लड प्रेशर है, आपकी डायबिटीज़ है, और इवन कैंसर इज रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, सो यू कैन डी स्ट्रेस योर बॉडी बाय स्पिरिचुअल ग्रोथ थ्रू स्पिरिचुअलिटी, एंड द डिजीज फैक्टर विल रिड्यूस। सो हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी विल गो हैंड इन हैंड, एंड वी हैव टू डेफिनेटली, एंड देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज फॉर दिस, डेफिनेटली वी कैन राजयोग कर सकते हैं आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप पॉजिटिव रीअफर्मेशन कर सकते हैं, परंतु इन सबको अगर हमें पूरे संसार में और भी बढ़ाना है, तो जैसे आपने छोटे छोटे कोर्सेज डेवलप किए हैं, ऐसे कोर्सेज हर चीज के लिए डेवलप करे जाएं, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों के पास हम ये सब पहुंचा सकेंगे। तो मैं सोचती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज एंड द परसेप्शन ऑफ द पेशेंट एंड द डॉक्टर, दैट अ होलिस्टिक अप्रोच इज रिक्वायर्ड। एक आपको मैं रिसर्च से लिंक्ड एक आपको बताऊंगी कि हम जब भी कोई दवाई के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे हम कोई बीमारी के लिए एक प्लेसेबो इफेक्ट कहलाता है, हम एक प्लेसेबो देते हैं। एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है, उसको खांसी है, तो खांसी के लिए आपके पास एक मार्जिन होता है कि आप दवाई दें या ना दें। तो हमने उसमें 20% लोगों को दवाई दी, 20% लोगों को हमने कोई दवाई नहीं दी, और 20% लोगों को हमने सिर्फ मल्टीविटामिन दिया, तो ग्लूकोज की गोली बना के सेम गोली जैसे हमने और दी थी। आप यकीन नहीं, मतलब ये दिस वॉज रियली वेरी सरप्राइजिंग, वी हैड अ 50% ट्रीटमेंट आउटकम ऑन प्लेसिबो, मतलब कोई दवाई नहीं थी उसमें, पर डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप ये गोली लेंगे आप ठीक हो जाएंगे। सो इसके लिए जरूरी है कि जो आप पॉजिटिव अफर्मेशंस कहते हैं और आप स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं, वो बहुत जरूरी है आज के संदर्भ से। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थ्रू आउट माई जर्नी ऑफ वर्किंग इन ट्राइबल एरियाज एंड अदर्स, आई हैव सीन अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी देयर, देयर फेथ, देयर ऑनेस्टी रियली गिव्स यू होप। इट्स रियली एन अमेजिंग आउटसाइड आवर वर्ल्ड experience, and so this is my experience, and I think spirituality, I also have to learn it. I'm still a learner. So thank you so much for inviting me, and thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भावना शर्मा जी का। इट वॉज वेरी नाइस टू हियर दैट यू हैव ऑलरेडी यूजिंग स्पिरिचुअल टूल्स इन योर मेडिकल साइंसेस। आप काम तो साइंस का कर रहे हैं, लेकिन उसमें स्पिरिचुअल टच पहले से ही दे रहे हैं। वेरी नाइस टू हियर दैट, आपका बहुत धन्यवाद। और अभी हम कुछ देर के लिए स्पिरिचुअलिटी को एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। आई इन्वाइट सिस्टर श्वेता फ्रॉम रूरकेला। श्वेता बहन जी हमें अपनी अंदर की दुनिया की तरफ और ऊपर की दुनिया की तरफ लेके चलेंगी। श्वेता बहन रूरकेला।
ओम शांति। सुबह से अभी तक आप सभी सुनते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी विशेषता है सुनना भी, जो आप सबके अंदर है। काफी समय से देख रहे थे, कुछ कुछ हैं जो निद्रा योग में गए, बहुत हैं जो जागृत अवस्था में भी थे। अभी जो कुछ पल के लिए हम जो मेडिटेशन करेंगे, निद्रा योग नहीं होना चाहिए। सभी सहमत हैं? सभी सहमत हैं? तो हम क्या करते हैं, यह निद्रा योग को दूर करने के लिए जो कुछ पल के लिए हम जो योग करेंगे, सभी खड़े हो जाएं। आप सभी खड़े हो जाएं। नो यू सिट। थोड़ा सा संभल के स्टेज पर जो बैठे हैं, प्लीज आप सभी बैठ जाएं स्टेज पर जो है। ओके। अभी अगर निद्रा योग होगा देन इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप सभी जानते हैं। चलें कुछ समय के लिए एक सुंदर सी यात्रा ओम शांति। थोड़े समय के लिए अपने आप को अन्य सभी प्रकार की बातों से डिटैच कर ले। और अपने को अपने आप में केंद्रित कर ले। एक सुंदर सा संकल्प में परम पवित्र आत्मा हूं, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, इस भ्रुकुटी के बीच में मैं चैतन्य शक्ति है, परम पवित्र आत्मा विराजमान हूं, जो इस पूरे शरीर को बहुत ही सुंदर रीति से चला रही है। मेरे में अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण है, मैं उस परम शक्ति परम सत्ता के संतान हूं, जो खुद अनंत शक्तियों का सागर है। मेरा स्वरूप शांति है, दिव्यता और पवित्रता मेरे संस्कार हैं। अब धीरे धीरे अपनी सोच की तरफ चले। मुझ आत्मा के हर सोच में दिव्यता और पवित्रता समाई हुई है। मेरे हर एक बोल में मधुरता समाई हुई है। मेरे इर्द गिर्द में जो भी है, हर एक उस प्रभु पिता के अति प्रिय संतान है। उस दिव्यता और पवित्रता की दृष्टि से मैं हर एक को देख रहा हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। इस शांति की शक्ति को कुछ सेकंड के लिए सभी अनुभव करें डेड साइलेंस में चले जाएं सभी, कोई भी प्रकार की आवाज नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक शांति की लहर के साथ है। Completely silent. कोई भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प नहीं, मैं आत्मा श्रेष्ठ संकल्प की धनी हो, किसी के साथ भी मैं मिलू, किसी के साथ भी मैं बोल व्यवहार में आऊं, तो मैं अपने इस स्वधर्म के साथ ही चलूं, हर एक के चेहरे पर एक सुंदर सा स्माइल, मेरे से ये शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही है, शांति। कृपया बैठ जाए सभी। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता बहन का, बहुत सुंदर अनुभव कराया हमारे भीतर की शांति का, गहन शांति का, आपका शुक्रिया। और अब निवेदन करती हूँ बहनों से, हमारे आज के विशेष अतिथि डॉक्टर भावना शर्मा जी का मेमेंटो देकर सत्कार करें।